उनके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था, उल्टा उन्होंने तुम्हारे कैरेक्टर पर, हमारे बच्चे पर ही सवाल उठा दिया। आखिरी शब्द कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। वो चुप हो गया और सिर झुकाकर खड़ा रह गया, जैसे अपने ही पिता के किए का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा हो। कायरव चुप हुआ तो कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। इनाया बस खामोशी से उसे देख रही थी। उसके डैड की इस हरकत ने इस चट्टान जैसे मजबूत इंसान को किस कदर तोड़कर रख दिया था। कितनी तकलीफ में था वो, और सब छुपाकर भी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त कायरव के चेहरे, उसकी बातों और भावों में शर्मिंदगी, गुस्सा, बेबसी और अपराधबोध, चारों भाव एक साथ झलक रहे थे। जो गलत था, जिसने सब किया, वो तो ना तो अपने गुनाहों का एहसास था और ना ही पछतावा, वो तो गुरूर से सीना तानकर उनसे बहस कर रहा था। और यहाँ कायरव उनके गुनाहों की सजा भुगत रहा था। सच कहते हैं लोग, जो बुरा होता है उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। सारी तकलीफ उसे ही होती है जिसका दिल साफ हो, और इनाया आज ही अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन कायरव के लिए चिंता उससे भी ज्यादा थी। बोलते बोलते कायरव उससे दूर हो गया था। इनाया धीरे से बेड से नीचे उतरी और धीमे कदमों से उसके सामने आकर रुक गई। कायरव, उसकी आवाज बहुत मुलायम थी। कायरव ने सिर उठाया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उससे मिलने से कतरा रही थी। इनाया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी भींची हुई मुट्ठियों को खोलकर उसकी हथेली को अपने हाथों में थाम लिया। तुम खुद को जिम्मेदार क्यों मान रहे हो? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इनाया ने सौम्यता से कहा। कायरव ने अपना चेहरा फेर लिया, जैसे वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। इनाया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुरान में भी दर्द था। हाँ, उन्होंने जो कहा वो गलत था, बहुत गलत था। जो किया वो माफी के काबिल नहीं था, और सच कह रही हूँ मैं, इन सब के लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे डैड हैं, लेकिन उनकी वजह से तुम्हें और मुझे जो तकलीफ हुई, जो दर्द हमने सहा, जो हालत मानव की हुई, जिन हालातों से हम गुजरे, मैं वो सब नहीं भूल सकती, नहीं माफ कर सकती उस इंसान को जिसने अपने हुरूर और जिद में अपने खुद के सगे बेटे की जिंदगी, उसकी खुशियों को उससे छीन लिया, अपनी बहू को उन दरिंदों के हवाले कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए एक इनोसेंट इंसान की जान लेने की कोशिश की, जिनके वजह से मैं अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत वक्त को ठीक से महसूस नहीं कर सकी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। कायरव की नजरें इनाया के चेहरे पर टिक गईं। दिल में भरी कड़वाहट और दर्द उसके चेहरे और बातों में झलकने लगा था। इनाया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी शांत थी। शायद तुम्हें ये सुनकर बुरा लगे, लेकिन आज मैं तुमसे कोई झूठ नहीं कहूंगी कायरव, उसने धीरे से कहा। मिस्टर रायचंद ने हमें अलग करने के लिए जो किया, अपनी एक जिद पूरी करने के लिए जितना नीचे वो गिर गए, ऐसा घटिया आदमी और उनके जैसा स्वार्थी बाप शायद इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। कायरव की आंखों में हल्की हरकत हुई, लेकिन इनाया ने अपनी बात जारी रखी। मेरे बाबा भी कोई अच्छे इंसान नहीं थे, वो एक नशेड़ी आदमी थे। उन्होंने भी पैसों के लिए मेरा सौदा कर दिया था। वो एक पल को रुकी, जैसे पुरानी यादों की जुभन एक बार फिर महसूस कर रही हूँ। लेकिन एक बात थी, उन्होंने कभी प्यार और परवाह का झूठा नाटक नहीं किया। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं, तो कम से कम उस रिश्ते का दिखावा भी नहीं किया। वो जो थे जैसे थे सामने थे। लेकिन तुम्हारे डैड, वो तो डबल फेस लेकर घूम रहे हैं। आज भी दुनिया के सामने एक अच्छे पिता होने का ढोंग करते फिरते हैं। बाहर से इतने अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर से इतने चालाक, स्वार्थी और घटिया आदमी हैं कि मैं उन्हें अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझती। सच कहूँ तो पहले मुझे भी नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस आदमी के लिए उसके बेटे की जिंदगी सिर्फ एक टील है, जिसके लिए उसकी जिद अपने खुद के सगे बेटे की खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपनी बात मनवाने के लिए भरी महफिल में अपने ही बेटे के कैरेक्टर पर सवाल उठा सकता है, उसे एक रेपिस्ट बना सकता है, मैं ऐसे इंसान से और उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ? जिस आदमी ने अपने खुद के बेटे को नहीं बख्शा, उसे रहम की उम्मीद करके कैसे सकती हूँ? इनाया ठहरी और संजीदगी से आगे बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा कि अब भी तुम्हारे डैड को उनकी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैं जानती थी कि उनका यही बिहेवियर रहेगा। उन्हें तो तब अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं हुआ था जब पार्टी में सबके सामने उन्होंने तुम्हें रेपिस्ट बना दिया था, और सच्चाई सामने आने के बाद तुमने उनसे सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। जब उन्हें अपने बेटे के जाने पर दुख नहीं हुआ, तो मैं तो उनकी कुछ भी नहीं लगती। उन्होंने तो कभी मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा माना ही नहीं। मेरे साथ उन्होंने जो भी किया, उसका तो उन्हें कभी पछतावा हो ही नहीं सकता, और उनसे ये उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है, इसलिए मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया, इस बच्चे को नाजायज कहा, तुम्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश की। मुझे ये सब सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि उनका जो रूप मैं देख चुकी हूँ, उसके बाद मुझे उनसे यही उम्मीद थी। पर एक बात सच सच कहूँ, उस पल मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने लिए नहीं, अब उसकी नजरें सीधी कायरव पर टिक गईं। तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। मुझे तो उन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम बहुत हर्ट हुए, इसलिए मुझे उन पर गुस्सा भी बहुत आया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बीच में आकर तुम्हारे लिए सिचुएशन और मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। मैं जानती थी अगर मैंने कुछ कहा तो वो भी कुछ घटिया बात ही कहेंगे, जिससे तकलीफ तुम्हें होगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। इनाया ने उसकी हथेलियों पर अपनी पकड़ कस दी और उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीरता से बोली, कायरव, जो मिस्टर रायचंद ने मेरे साथ किया वो बहुत बुरा था। उनके वजह से मुझे, मानव, काकी और हमारे बच्चे को बहुत सफर करना पड़ा। वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। बहुत हर्ट हुई थी मैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख मुझे अब इस बात का है कि तुम खुद को इसके लिए दोष दे रहे हो। वो तुम्हारे डैड हैं कायरव, लेकिन उनके किए के लिए तुम खुद को सजा क्यों दे रहे हो? मैं जानती हूँ जब आपका खुद का बाप आपका दुश्मन बन जाए, ऐसे काम करे कि आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाए तो कैसा लगता है, कितनी तकलीफ होती है। मैंने भी ये सब फेस किया है, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। इनाया अतीत की यादों में कहीं खो गई। उसका मन उसके बीते कल में भटकने लगा। पता है, शुरू में मुझे भी अपने वजूद से नफरत होती थी कि मैं ऐसे घटिया आदमी की बेटी हूँ जिसने मेरी आई को धोखा दिया, जिसके वजह से वो मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई और मैं उन्हीं के फेंके टुकड़ों पर पलती रही। नौकरों जैसे उनकी गालियां और मार खाकर भी उनके सारे काम करती रही। मुझे उन्हें अपना बाप कहते हुए शर्म आती थी। वो गलत काम करते और गुंडे धमकाने घर आते, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरा दिल करता कि मैं अपनी जान दे दूं। फिर मैंने खुद को समझाया कि अगर मेरा बाप इतना घटिया आदमी है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो उसे अपना बाप नहीं चुना, मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया, फिर मैं क्यों किसी से नजरें चुराऊं? जब मैं सही हूं तो मैं इज्जत से सर उठाकर जीऊंगी। वो आदमी कैसा है, क्या करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना तो मैं क्यों उनके हिस्से की जिल्लत सहूं? इनाया ने अब नजरें कायरव की तरफ उठाई।
आज तुमसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ, जो किया तुम्हारे डैड ने किया, गलत वो है, तो तुम उनके गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ। उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो तुम भी अब उनके बारे में सोचना छोड़ दो। उनके गुनाहों का जिम्मेदार खुद को मानना बंद कर दो। आज़ाद कर दो खुद को इस गिल्ट और शर्मिंदगी से। तुम सही हो तो गर्व से सर उठाकर चलो। आज भले उन्हें अपने गुनाहों का एहसास नहीं, लेकिन इससे उनके गुनाह मिट नहीं जाएंगे। बप्पा सब देख रहे हैं और वो सबको उनके कर्मों का फल भी देते हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो हमारे साथ भी अंत में सब अच्छा ही होगा। और जो गलत है उन्हें भी उनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वक्त अच्छे अच्छों को सीधा कर देता है। जब भगवान की लाठी पड़ती है तो घमंडी से घमंडी आदमी का गुरूर चकनाचूर हो जाता है। तुम्हारे डैड को भी अपने गुनाहों का एहसास ज़रूर होगा, बस वो कब और कैसे होगा ये बस बप्पा के हाथ में है। इसीलिए हमें सारी चिंता फिक्र उन्हें सौंप देना चाहिए, वो सब संभाल लेंगे। कुछ पल रुककर उसने धीरे से उसका हाथ अपने पेट पर रखा। और जहां तक हमारे बच्चे और तुम्हारे डैड के मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की बात है, उसकी आवाज़ में अब अजीब सी मजबूती आ गई थी। हमें पता है ना सच क्या है, बस वही काफ़ी है। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। इसके अलावा किसी बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनाया की बात सुनकर कायरव की आंखों में भरे जज्बात और गहरे हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर रखा भारी पत्थर धीरे धीरे हल्का होने लगा हो। कुछ पल तक वो बस इनाया को देखता रहा, उस लड़की को जो खुद इतना कुछ सहने के बाद भी आज उसे संभाल रही थी। कायरव ने धीरे से अपनी उंगलियां इनाया की उंगलियों में कस दी और दूसरी हथेली उसके पेट पर ठहर गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। इनाया उसके साथ थी और उसके दिल के ठीक नीचे उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी धड़क रही थी। उसी पल कायरव ने दिल ही दिल में खुद से प्रॉमिस किया, अब चाहे जो भी हो जाए वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा, कभी किसी को उन्हें चोट नहीं पहुंचाने देगा, कभी नहीं। टू बी कंटिन्यूड।